प्रियल ने मिस्टर मुखर्जी से बात करके मीरा के बाबा की मौत से जुड़े राज जानने का सोचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं निक उसके आसपास तो नहीं है। प्रियल दबे पांव चलते हुए गार्डन के दूसरे कोने में गई और मिस्टर मुखर्जी को कॉल किया। मिस्टर मुखर्जी बोल पड़े, हाँ बोलिए प्रियल, कुछ जरूरी काम था? सॉरी, बट अब मैं इस मिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपसे शेयर नहीं कर सकता। प्रियल बोली, नहीं मिस्टर मुखर्जी, मुझे इस मिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। मुझे आपसे मीरा के बाबा चंद्रकांत चक्रवर्ती के मौत के सिलसिले से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए। मिस्टर मुखर्जी बोले, कुछ हुआ है क्या मिस शर्मा? पहले अंकित सर ने चंद्रकांत चक्रवर्ती की केस फाइल से जुड़ी डिटेल्स मंगवाई थी, तो अब आप इस बारे में बात कर रही हैं। देखिए, मेरे पास जो भी डिटेल थी वो मैंने अंकित सर को मेल कर चुका हूँ। अगर आपको उससे जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए तो आप अंकित सर से ले सकती हैं। प्रियल बोली, अंकित सर को जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो ब्रीफ संक्षेप में बनाई गई थी, जबकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए। मुझे इस केस से जुड़े हर छोटे बड़े सबूत से लेकर हर एक व्यक्ति की गवाही तक सभी जानकारी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन में सारी डिटेल मिल सके तो। ओके, थैंक्स, प्लीज हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस बारे में निक से कोई बात मत कीजिएगा। प्रियल मिस्टर मुखर्जी से बात करके मुड़ी तो उसने देखा कि निक उसके पीछे खड़ा था। प्रियल सोचते हुए बोली, कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली? मीरा को लेकर पहले ही हम दोनों के बीच में बहुत बहस हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बीच दूरियों की वजह बने। निक ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं है कि जब तक मीरा घर में है तुम घर में कदम ही नहीं रखोगी। बच्चों के बारे में भी तो सोचो, तुमने उन्हें बेवजह डांट दिया। उन दोनों को लग रहा है कि हम दोनों उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैंने उन्हें नहीं डांटा और मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें गुस्से में कुछ बोला था। उन्होंने किसने कहा कि मैं उनसे प्यार नहीं करती? मेरी जान बसती है उन दोनों में। हाँ, तो यही बात जाकर उन्हें बोलो, दोनों कब से गुमसुम खड़े हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कहाँ हैं दोनों? निक ने कहा। अच्छा, आप थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, वो एक्चुअली बच्चे और मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहे थे। प्लीज तब तक बाहर ही बैठ जाओ। अगर तुम्हें बाहर थकान हो रही है तो कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर सकती हो, लेकिन किचन एरिया में मत आना। मैं बाहर ही ठीक हूँ, उसने सोचा। घरवाली को तो बाहर रुकने को बोल रहे हैं और जो बाहर वाली है उसे घर में लाकर पटक दिया है। निक प्रियल को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। वो दोनों बच्चों के साथ किचन में खड़ा था कि तभी मीरा वहां पर आई। मीरा निक के करीब आते हुए बोली, आप किचन में क्या कर रहे हो? मुझे बोल देते, मैं बना देती खाना। नील धीरे से बोला, ये तो वही दीदी है ना जो पापा की गेस्ट है, लेकिन ये पापा के इतने पास क्यों आ रही है? नियति मीरा को धकेलकर निक के पास आई। पापा, मैं आपकी हेल्प करूं? मीरा ने सोचा। प्रियल तो प्रियल, उसके बच्चे भी उसी जैसे हैं। देखो तो सही, ये चुड़ैल कैसे मुझे दूर करके मेरे शोना के पास आ गई? निक ने कहा, नहीं बच्चे, मैं कर लूंगा, आप अभी बहुत छोटी हैं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, दोनों बिल्कुल आपके जैसे लगते हैं ना, देखिए आईज भी आपकी तरह ब्लू हैं। हाँ, लेकिन नियति मेरे जैसी नहीं, अपनी मम्मा के जैसी लगती है। मीरा, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो ना, मैं ये सब अपने आप देख लूंगा, तुम इस घर की मेहमान हो, नाउ गो। मीरा बोली, नहीं, मैं यहाँ आपके साथ खड़ी हूँ, मैं कमरे में अकेली बैठी बोर हो गई थी, यहाँ रहूंगी तो अच्छा लगेगा। नील बोला, जब पापा ने आपको बोल दिया है कि जाकर आराम करो तो आप यहाँ क्यों खड़ी हो? नियति ने निक का हाथ पकड़ा, चलो पापा, हम प्रियल के पास चलते हैं। निक ने हाथ में सर्विंग डिश ले ली। एक्सक्यूज मी मीरा, चलो बच्चे आ जाओ और दौड़ना मत। नील और नियति निक को प्रियल के पास लेकर चले गए। मीरा उन दोनों को गुस्से से देख रही थी। मीरा बोली, मैं भी देखती हूँ कि कब तक इन्हें मुझसे दूर लेकते रहोगे, ये मेरे हैं, हम दोनों के बीच ना तो तुम दोनों आ सकते हो और ना ही तुम्हारी मम्मा, उसे भी पता चल जाएगा कि उसकी क्या औकात है। पहले मुझे लगा था कि चीजें मेरे लिए मुश्किल होने वाली हैं, तुम दोनों इन्हें मुझसे दूर लेकर गए थे ना, अब तुम दोनों ही शोना को मेरे पास लाने की वजह बनोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और निक साथ होंगे और तुम दोनों अपनी मम्मा के साथ अकेले। मीरा की बातों से उसके इरादे साफ समझ आ रहे थे कि वो यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं आई थी। उसके दिलो दिमाग पर अभी भी निक के प्यार का भूत सवार था और वो कैसे भी करके उसे पाना चाहती थी। इस बार मीरा पूरी तैयारी के साथ आई थी और वो निक को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। निक बाहर दोनों बच्चों के साथ प्रियल के लिए केक बनाकर लाया था जिस पर उसने सॉरी लिखा था। प्रियल बाहर बैठकर अभी भी वो रिपोर्ट पढ़ रही थी। प्रियल सोचते हुए बोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर चक्रवर्ती डायबिटिक थे, उनकी बॉडी में शुगर लेवल बर्स्ट हो गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी हेल्थ कंडीशन का पता ना हो, मैंने खुद उनका रूटीन देखा था, वो डेली वॉक पर जाते थे और दिखने में भी काफी फिट थे। मीरा के पास अच्छे खासे गवाह हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि उनकी मौत के वक्त वो वहां मौजूद नहीं थी। तो क्या मिस्टर चक्रवर्ती ने जानबूझकर खुद की जान ली? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें उन दिनों ज्यादा मीठा खिलाया हो या इंसुलिन का ओवरडोज दिया हो। निक ने प्रियल के पास आकर कहा, सरप्राइज। प्रियल अचानक होश में आई। प्रियल, कहाँ खोई हुई हो? देखो बच्चे और मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाए हैं। प्रियल नील और नियति के पास जाकर बोली, अच्छा तो मेरे नील और नियति ने मेरे लिए केक बनाया है, बस यही दोनों हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, वरना यहाँ तो किसी और को अपने मेहमानों से ही फुर्सत नहीं है। निक ने कहा, नियति, नील आ जाओ बेटा, साथ मिलकर प्रियल को डांट लगाते हैं, कुछ ज्यादा ही अजीब हरकत कर रही है, तुम दोनों को डांटा ना इसने। नियति बोली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा था कि ऐसे ही डांट दिया होगा। नील बोला,
वरना मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है। प्रियल ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के माथे पर किस करके उन्हें अपने गले लगा लिया। निक उन तीनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। अंदर खड़ी मीरा उन्हें साथ देखकर बहुत जल रही थी। मीरा को निक के घर पर आए हुए लगभग एक हफ्ता होने को आ गया था। मिस्टर मुखर्जी अभी तक प्रियल को मीरा के बाबा की मौत से जुड़ी डिटेल्ड फाइल नहीं भेज पाए थे। जहां एक तरफ मीरा अपनी बातों और व्यवहार से बच्चों और निक का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं प्रियल को अभी भी मीरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। सुबह का समय था और कबीर और परी ने सगाई करने का फैसला किया था। दो दिन बाद उनकी शादी की सगाई होने वाली थी। निक सारी तैयारियां देखने के लिए लखनऊ गया हुआ था, जबकि उसके पीछे से घर पर मीरा, प्रियल और दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। प्रियल सुबह सुबह दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। नील बोला, मम्मा अब हम स्कूल कैसे जाएंगे, आज तो हमारा एग्जाम है। नियति बोली, पापा भी यहाँ पर नहीं है, हम आपको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएं। प्रियल दबी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे पापा इवनिंग तक आ जाएंगे। अच्छा एक काम करो नील, मुझे मेरे रूम से मेडिसिन बॉक्स ला दो। नियति बेटा जाओ पानी लेकर आओ, दवाई लेकर मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों को स्कूल भी छोड़ जाऊंगी। मीरा हाथ में मेडिसिन बॉक्स और पानी लेकर आई। आप जिद क्यों कर रही हो प्रियल, दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ाऊंगी। हाँ
प्रियल बोली, नहीं मीरा मुझे इन दोनों के टीचर से बात भी करनी थी, तुम घर पर रहो मैं छोड़ाऊंगी इन्हें स्कूल। आप जिद क्यों कर रही हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में आप दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी। नील बोला, नहीं हम मम्मा के साथ ही स्कूल जाना है। नियति समझदारी से बोली, मम्मा आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम दीदी के साथ चले जाएंगे, पापा ने बोला था आपका ख्याल रखने के लिए, आप आराम करो हम चले जाएंगे। प्रियल दवाई लेते हुए बोली, मैं ठीक हूँ तुम दोनों चलो मेरे साथ। उसने मन में सोचा, एक बार मिस्टर मुखर्जी मुझे सारी डिटेल्स भेज दें, उसके बाद मैं प्रूफ कर दूंगी कि तुमने ही अपने बाबा को मारा है। मीरा तुम पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ हो और तुम्हारी हरकत देखकर कोई भी बता देगा कि तुम यहाँ पर मुझे और निक को अलग करने आई हो। इस एक हफ्ते में तुमने हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाने का एक मौका नहीं छोड़ा, ऐसे में कैसे मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ भेज दूं। मीरा ने सोचा, प्रियल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हम पर विश्वास है या नहीं, बस हम इन दोनों बच्चों के साथ अकेले कहीं जाने का मौका मिल जाए, उसके बाद निक को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपकी हालत ऐसी है नहीं कि आप इस हालत में हमसे लड़ पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आपके बच्चों और पति को लेकर फुर्रो जाएंगे। प्रियल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आई। मीरा अच्छे से समझती थी कि प्रियल को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्रियल वापस घर आ चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी तबीयत सही नहीं हुई थी। मीरा बोली, हमने तो पहले ही कहा था कि आप आराम कीजिए, बच्चों को हम स्कूल छोड़ाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी जिद करनी होती है। प्रियल हाफ रही थी, तुम थोड़ा दूर रहो मुझसे, मुझे रिलैक्स करना है ना कि अपने दिमाग पर प्रेशर देना है, प्लीज मेरे आसपास मत रहो, तुम्हें देखते ही मेरा बीपी हाई हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में आपको ये तो महसूस हो ही गया होगा कि हम अब बदल गए हैं प्रियल, फिर आप हमारी रूट क्यों रही हैं? क्योंकि इस हफ्ते में मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया मीरा, कि तुमने मेरे और निक के बीच झगड़ा करवाने का एक मौका नहीं छोड़ा। आप हमें गलत समझ रही हैं, अच्छी बात है अब यहाँ से जाओगी। प्रियल के गुस्सा करने की वजह से मीरा वहाँ से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद प्रियल भी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके अंदर जाने के बाद मीरा बाहर आ गई। वो इधर उधर ताक झांक कर रही थी कि प्रियल का फोन बजा। मीरा ने फोन उठाया। हेलो जी आप कौन, सामने किसी की आवाज आई। मैं नील और नियति की क्लास टीचर फाल्गुनी बोल रही हूँ, इनके आज के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो आप दोनों को लेने आ जाइए। हाँ हम अभी आ रहे हैं, मीरा ने दबे पांव जाकर प्रियल के कमरे में झांका तो वो सो रही थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मीरा ने प्रियल का मोबाइल उठाया और घर से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने किसी को कॉल किया। मीरा बोली, हेलो हम बोल रहे हैं, अरे ये हमारा नंबर नहीं था, हमारे पास कोई फोन ही नहीं था तो जो फोन मिला उसी से कॉल कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें जो भी कहा था उन सब की तैयारी कर लेना, हम बस कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। मीरा ऑटो करके नील और नियति को स्कूल लेने पहुंची। दोनों बच्चे प्रियल के आने का वेट कर रहे थे लेकिन उन्होंने मीरा को आते देखा तो दोनों ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। नियति बोली, आप हमें लेने क्यों आई हैं और मम्मा कहाँ हैं? मीरा बोली, आपको तो पता है ना सुबह आपकी मम्मा की तबीयत कितनी खराब थी, उनकी हालत अभी भी वैसी ही है तो उन्होंने मुझे आप दोनों को लाने भेज दिया। नील ने पूछा, पापा घर आ गए क्या? नहीं लेकिन जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक शायद आ जाएं। अब हम चलें? मीरा नील और नियति को लेकर एक ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, मानो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों। मीरा ने उन दोनों को रास्ते में पीने के लिए पानी की बोतल दी जिसे पीने के बाद वो दोनों बेहोश हो गए। वहीं दूसरी तरफ निक घर पर आया तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं था। उसने अंदर जाकर प्रियल के रूम की तरफ देखा तो वो बाहर से बंद था। उसे लगा कि प्रियल बच्चों को लेने स्कूल गई होगी। यही सोचकर निक वहीं बैठकर अपने काम में लग गया। निक और प्रियल मीरा की हरकतों से बेखबर थे तो वहीं मीरा नील और नियति शिमला से थोड़ा दूर एक अनजान जगह पहुंच चुकी थी।